शांति। तो आज के सायंकालीन सत्र में मुरलीधर बाप के मास्टर मुरलीधर आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी हम सब के बीच में पधारे हैं, एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आप यूपी की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1956 में लौकिक जन्म हुआ और 1960 में लौकिक घर में गीता पाठशाला कहें, ईश्वरीय गतिविधियां कहें, आरंभ हो गई। और आपका ये सौभाग्य रहा कि बाल्यकाल से ही ईश्वरीय वातावरण मिला। उसी ईश्वरीय वातावरण में रहकर लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाइयां पढ़ते हुए बड़े हुए। 1971 में पहली बार मधुबन धरनी पर कदम रखा, जिसकी अमीर छाप दिलो दिमाग पर पड़ी। और फिर अगले वर्ष 1972 में जब आए तो आकर के जीवन ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित किया। विविध सेवाओं में अपना योगदान देते रहे आरंभ के वर्षों में। और फिर 1976 में आपके कंधों पर एक विशेष प्रकार की जिम्मेवारी आई। आप गेस कर सकते हैं कौन सी? मुरली की, जिसके कारण ही पूरे ब्राह्मण परिवार में आपकी प्रसिद्धि किस नाम से है? मुरली वाले राजू भाई। तो जो मुरलियां सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी करना और सभी सेवा केंद्रों को पोस्ट करना, ये सेवा आज दिन तक आप बखूबी निभा रहे हैं। और इतना ही नहीं, पत्र पुष्प भी आप ही कंपोज करते हैं, अव्यक्त मुरलियों में से छोटी छोटी पुस्तिकाएं आप ही तैयार करते हैं, दादियां मम्मा बाबा दीदियों पर भी आप छोटी छोटी पुस्तिकाएं तैयार करते हैं। और ये सारी छोटी छोटी पुस्तिकाएं हमें हमारे पुरुषार्थ के लिए बहुत मददगार होती हैं। और इतना ही नहीं, चूंकि सारा ही समय बुद्धि में कहें और आपकी उंगलियां कहें मुरलियां टाइप करने के लिए टाइपराइटर पर कीबोर्ड पर नृत्य करती रहती हैं, तो अवश्य वो मुरलियां फिर मन बुद्धि में भी नृत्य करना आरंभ कर देती है। और जिस कारण से मुरलियां भीतर में कूट कूट कर भरी हुई है, तो अव्यक्त मुरलियों का आपने टॉक शो भी किया है अमूल्य रतन, जिसके 1300 एपिसोड आपने पूरे कर लिए हैं और आप सभी भाई बहनों उसका अवश्य ही लाभ लेते होंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा ग्रामीण विकास प्रभाग है, आप उसके वाइस चेयरपर्सन हैं, जिस प्रभाग के द्वारा शाश्वत यौगिक खेती की एक बहुत सुंदर अवधारणा तैयार की गई, जिससे किसान जगत में बहुत बड़ी क्रांति आई हुई है। इतना ही नहीं, मधुबन के अंदर स्टेशनरी फोटोकॉपी हिंदी टाइपिंग आदि आदि का कारोबार आपके डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। दादियों के पास जो पत्र आते हैं उनके भी जवाब आप देते हैं। और पूरे भारत भर में तो क्या, विश्व भर में आप भ्रमण करते हुए बाबा की बातों से सबको अवगत कराते हैं, पुरुषार्थ में हाई जंप लगाने की विधि बतलाते हैं। ऐसे ही एक हाई जंप लगाने के लिए आज का विषय है सर्वशक्तिमान और सर्व प्राप्तियों की अनुभूति। इस पर आप प्रकाश डालेंगे, तो सुनते हैं भ्राता जी को। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। मधुबन की तपस्या भूमि में आप सभी को विशेष तपस्या का गोल्डन चांस मिला है। और सबसे भाग्यशाली तो हमारी टीचर्स, इतनी संख्या में उड़ीसा की धरनी से आकर तपस्या कर रही हैं। नीचे भी 2000 का ग्रुप है, आज उनसे भी मिलना हुआ और आप सबके बीच में भी आए। बाबा के घर में बाबा के बच्चे आते हैं, सब प्रकार से बाबा उन्हें भरपूर कर देता है, ऐसा अनुभव करते हो ना। सर्व प्राप्तियों से संपन्न संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों को अखुट खजाने दिए हैं, अविनाशी खजाने दिए हैं, और उन अविनाशी अखुट खजानों से हम सबको संपन्न बनाया है, प्राप्ति स्वरूप बनाया है। और इतना दाता ने दिया है जो अखुट है, और एक के पास इतना है जो सबको देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। अखुट भी है, अखंड भी है। तो हम सब बाबा के बच्चे जितना सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ बाबा को साथी बना करके रहते हैं, तो उनके साथ के कारण अपने आप सर्व प्राप्तियां होती जाती हैं। आज भी बाबा के वरदान में था, जब बीज को हम अपना बनाते हैं, बीज को हम पकड़ लेते हैं तो सारा वृक्ष अपना हो जाता है। तो हमने उस बीज रूप बाबा को पहचाना है, उनके साथ हमारा सर्व संबंध है, अति प्यार है, तो जो कुछ उनका है वो सब बच्चों का है। इसलिए जो सागर है भरपूर है, दाता है, विधाता है, वरदाता है, उसके हम सब बच्चे मास्टर हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो कि बाबा ने इतना दिया है, इतना दिया है, जो एकदम संपन्न हो गए, भरपूर, खाली नहीं है। अगर खाली होंगे तो हलचल होगी, कहते हैं खाली घड़ा जो होता है ना वो हिलता है, और जो भरा हुआ होता है वो अचल हो जाता है। तो अगर हम सबकी स्थिति हर परिस्थिति में अचल अडोल एक रस रहती है, कोई भी बातें आ जाए, बाबा ने हमें बिल्कुल फुल बनाया है, कोई हिला नहीं सकता, तो ऐसी अनुभूति होती रहे। एक तरफ ज्ञान का सागर ज्ञान के अखुट खजाने दे रहा है, ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहा है, और एक एक रत्न की कीमत कितनी है। कई बार बाबा कहते हैं लाखों करोड़ों अरबों रुपए से भी मूल्यवान रत्न है ये, जो स्वयं भगवान ने हम बच्चों को दिए हैं। सिर्फ उसका नशा हो, उसका मनन हो, उसका चिंतन हो। देने वाले ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसने दिया और हमने उसको अपना कितना बनाया है वो नंबर वार है। सबने बनाया है, ज्ञान रत्नों का इतना अखुट खजाना मिला है, मुझे अलग दिया है या आपको अलग दिया है, ऐसा तो नहीं है ना। बाबा कहता मैं स्पेशल ट्यूशन तो किसी को भी नहीं देता, एक जैसा पढ़ाता हूँ, चाहे 2 साल 4 साल का बच्चा है, चाहे 30-35 साल का है, चाहे 80-90 साल का है। जितने समय से बाबा का यज्ञ स्थापित हुआ, जो कुछ बाबा ने पढ़ाया वो सब के लिए खुला है, कोई अलग स्पेशल कुछ नहीं है। तो सारी पढ़ाई सारा ज्ञान ज्ञान सागर ने ऐसा दिया, जो कई बार बाबा कहता है इन छोटी छोटी चिड़ियाओं ने सागर को भी हप कर लिया। हप किया है, किया है आप लोगों ने, किया है, चेक करना सचमुच मुझे बाबा ने जो भी दिया पढ़ाया है, ज्ञान रत्नों का भंडार, और इतना स्पष्ट ज्ञान दिया, स्वयं का ज्ञान दिया, पिता परमात्मा का ज्ञान दिया, घर का ज्ञान दिया, कितना लोगों ने मुझा दिया, ब्रह्म क्या है, तत्व क्या है, शिव कौन है, सबको एक कर दिया। कई बार बाबा मुरली में बड़ी रमणीकता से कहते हैं, गुड़ गुड़ धानी कर दिया, मिला दिया सब कुछ। और बाबा ने एक एक बात कितनी स्पष्ट बता दी कि ब्रह्म तत्व आत्माओं के रहने का स्थान है, वो भगवान नहीं है, ब्रह्म भगवान नहीं है, लेकिन घर है, वहाँ शिव परमात्मा का निवास स्थान है, और हम आत्माएं उस घर से इस सृष्टि मंच पर पार्ट बजाने के लिए आई हैं। हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता है, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, बहुत कल्याणकारी है। कैसे रिपीट होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार युग होते हैं, उसका आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, एक एक बच्चे को नॉलेज फुल, त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, किसने बनाया, ज्ञान सागर ने बनाया है, है ना सर, है ऐसे कि नहीं है। अभी बुद्धि कहीं भी किसी के ज्ञान में प्रभावित हो सकती है, कितना भी कोई अच्छा अच्छा शास्त्र सुनाए, वेद सुनाए, कथाएं करे, कहीं पर भी बुद्धि का झुकाव नहीं जा सकता। जिसने ज्ञान को अच्छी तरह से यथार्थ रीति से समझा है और समझ करके जिसने उसको अपने स्वरूप में लाया है, सिर्फ सुना और सुनाया नहीं, उसका मंथन किया, उसको अपने स्वरूप में लाया, तो बाबा कई बार कहते हैं जो ऐसे मेरे बच्चे हैं वो ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय हैं। योगी तू आत्मा प्रिय नहीं कहा, ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। तो ज्ञान को अगर स्वरूप में लाया है तो उसकी पहली निशानी क्या होगी, बोलो टीचर, ज्ञान अगर मेरे स्वरूप में आया है तो उसकी निशानी, पहली निशानी परिवर्तन होगा, खुशी रहेगी, संतुष्टता रहेगी। कभी भी कोई भी परवश स्थिति नहीं बन सकती। जो परवश हो जाते हैं, कहते मैं चाहता नहीं था, मैंने बोल दिया, मैंने कर लिया, मेरे से हो गया, सोचा नहीं था लेकिन हो गया। ये जो वर्तमान समय कलयुग के अंदर हर आत्मा अपनी इंद्रियों की गुलाम बनी है, परवश हो गई है, इसके कारण तो इतने पाप हो रहे हैं, इतने बुराइयां फैलती जा रही हैं। बाबा ने जब ज्ञान दिया, समझ दी, आत्मा मालिक है, सिर्फ आत्मा हम कह नहीं रहे हैं, शब्दों में नहीं आ रहे हैं आत्मा है आत्मा है, लेकिन मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूं, मन बुद्धि की मालिक हूं, मन बुद्धि मेरे हैं, मेरे बिना कहीं भी इधर उधर भटक नहीं सकते। अगर सचमुच कोई ज्ञानी तू आत्मा है तो कभी भी ये कंप्लेन नहीं रह सकती, जो आज बाबा कह रहे थे ना, क्यों क्या कैसे की कंप्लेन खत्म हो जाती है, शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। मैं चाहता नहीं था, मेरी दृष्टि चंचल हो गई, मेरी वृत्तियां खराब हो गई, मेरे मुख से ऐसे अपशब्द निकल गए, मेरे संबंध बिगड़ गए, ये जो पराधीन स्थिति है, परवश स्थिति है, इंद्रियों की गुलामी है, जो आत्मा ज्ञानित्व आत्मा है, जिसने ज्ञान को अपने अंदर भर लिया, संपन्न बना है ज्ञान से, उसकी बहुत अच्छी निशानी प्रैक्टिकल की है कि जो कुछ करेगा वो यथार्थ होगा। ऐसे नहीं मैंने सोचा नहीं था, मैंने बोल दिया, मेरे से निकल गया, मेरे से हो गया, ये स्थिति समाप्त हो जाती। वैसे भी कहते हैं सोचो समझो फिर बोलो फिर करो, पहले तौलो फिर बोलो। कई लोग कहते हैं मेरा कोई भाव नहीं था लेकिन मेरे मुख से निकल गया, अब तीर निकल गया तो कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगा ही। कहते हैं एक बार रामायण में एक ऐसी कहानी हंसी की सुनाते हैं, कहते हैं जब राम को लंका पर चढ़ाई करनी थी, बड़ी रमणीक कहानी है, तो उन्होंने सागर से रास्ता मांगा। सागर बीच में है ना, रामेश्वरम और लंका के बीच में सागर है। तो रामेश्वरम में शिव बाबा की स्थापना की राम ने, वो दिखाते हैं, यादगार बनाया है वहां पर। और वहां से जब सागर से कहा भाई हमें रास्ता दे दो, तो रास्ता नहीं दे रहा था, तो राम को थोड़ा सा जोश आया और उन्होंने तीर निकाल लिया। अब जब तीर निकाल लिया तो सागर डर गया तो सुखा देंगे, वो खड़ा हो गया सामने आके, कहता मुझे माफ करो, मेरे पर अभी नहीं चढ़ाओ, आपको रास्ता दे देते हैं। लेकिन वो तीर निकल गया था तो क्या करेंगे, कहीं तो छोड़ेंगे ना। तो कहते हैं, बड़ी रमणीक बात सुनाते हैं, कि वहां से छोड़ा और आकर के राजस्थान के रेगिस्तान में गिरा, यहां सुखा दिया सब कुछ। तो वर्तमान समय हर ब्राह्मण आत्मा को इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि कोई इस मुख रूपी कमान से ऐसा तीर न निकल जाए जो किसी के दिल को घायल कर दे। बहुत जल्दी निकल जाता, अनकंट्रोल हो जाता। अब संपन्न है, संपन्न भरपूर है आत्मा, और सर्वशक्तिवान का साथ है, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान कहने के लिए है क्या? कई बार कहते हैं ये स्मृति में लाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये कोई रटने की चीज नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिवान हूं तो सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, और सबसे बड़ी शक्ति परखने की शक्ति है, परख करके तुरंत निर्णय लेने की शक्ति है। सब शक्तियां साथ साथ काम करती हैं। तो अपने आप से ये जरूर पूछना, भट्टी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आकर के योग करते रहो, मैं आत्मा हूं परमात्मा है, लेकिन उससे जो शक्तियां हमें प्राप्त हो रही हैं, क्या वो मेरे कर्म क्षेत्र पर काम में आती हैं? हर समय हमारी दादी जी का एक बड़ा अच्छा शब्द रहता था, कहती थी उस स्कूल के पेपर तो 3 मास 6 मास 9 मास फिक्स होते हैं, और मैं तो समझती हूँ मेरा तो हर समय पेपर है। मैं अपने आप को सदा पेपर हाल में देखती हूँ, कोई भी समय कभी भी कोई भी पेपर आ जाता, जो मुरली सुन के आओ, जो बात बाबा सिखा रहे हैं, वायदा करा रहे हैं, संकल्प दिला रहे हैं, वही बात सामने पेपर बन के आ जाती। तो अगर ये भान रहता है, स्मृति रहती है कि इस समय कलयुग के अंतिम समय में जब हर आत्मा के हिसाब किताब चुक्त होने का समय है, जो कुछ हमने पिछले जन्मों में किया, 21 जन्म तो संगम की प्रारब्ध भोगी, वहां तो कोई भी कर्म नहीं हुए, लेकिन द्वापर युग से जितना आत्मा देह मान में आती गई, कितने विकर्म हुए, कितने पाप कर्म हुए, कितनी आत्माओं को सताया होगा, क्या क्या किया होगा, अब कलयुग के अंत में कहीं ना कहीं से वो आत्माएं आकर के मिली हैं, संबंध इन्हीं से रहे हैं जो हमारे समीप आई हैं, साथ में रह रही हैं, किसी न किसी रूप में हिसाब किताब आता है। लेकिन क्या वो शक्ति है, सर्वशक्तिवान की शक्ति है, जो उस हिसाब किताब को बहुत सहज रीति से हम पार कर ले, सूली भी कांटे के समान हो जाए। लोगों के लिए सूली है बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात हो गई परिवार में, ऐसी बात हो गई संबंधों में, ऐसी कई अच्छे अच्छे दोस्त दुश्मन बन जाते, अपने ही पराये हो जाते, ऐसे समय पर क्या वो शक्ति काम करती है? मुझे सहन करना है, मुझे समाना है, मुझे समेट लेना है, मुझे संकल्पों के विस्तार में नहीं जाना है। क्या सचमुच हर एक सर्व शक्तियों से संपन्न बना है? जब सर्वशक्तिमान बाबा का हमारा साथ है तो वो शक्तियां समय पर साथ देती हैं, या समय बीत जाने के बाद सहन कर लेते तो बड़ा अच्छा था, समा लेते तो सब झगड़े खत्म हो जाते हैं, पश्चाताप। ये स्थिति कौन सी है? अज्ञानी की। अज्ञानी आत्माएं ऐसे कहती हैं मैंने सोचा नहीं था इसका इतना गलत प्रभाव पड़ेगा, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही कह लिया, ऐसे ही हो गया। कितनी जेलें जो भरी पड़ी हैं, जहां पर जो कैदी लोग रहते हैं, कभी उनसे मिलो, देखो, उनसे पूछो। वो परवश स्थिति का ही अधिकतर लोग, कोई कोई तो जेल बर्ड होते हैं, बाबा कहता है, पाप करते हैं फिर जेल में जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग हैं जो कहते हैं मैं चाहता नहीं था लेकिन मेरे से हो गया। अगर सर्वशक्तियों से संपन्न आत्मा है, वो प्राप्तियों से भरपूर आत्मा है, तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि हो गया, श्रीमत की अवज्ञा हो गई, पाप हो गया। अभी हम सबको बाबा ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं, इतनी शक्तियां दी हैं, हर शक्ति का समय पर प्रयोग हो। जरूरत है सहन करने की, सहन कर लिया, जरूरत है समाने की, समा लिया, अब जरूरत है सामना करने की, कोई ऐसी बात आई है, सामना कर लिया। तो समय पर अगर यथार्थ रूप में सर्वशक्तिमान की स्मृति है, साथ है, तो शक्ति को आर्डर करो और काम करिए, जरूरत है। और इसके लिए बाबा कहता है कोई भी कर्मचारी, कोई भी मंत्री कहना तब मानता है जब राजा अपनी सीट पर होता है। आज हमारे भारत में जो राजाई गई, प्रजा का प्रजा पर राज्य हुआ, कभी विचार किया है कि राजाओं की राजाई छिन कैसे गई, दूसरे लोगों ने आक्रमण कैसे किया? बाबा कई बार सुनाते हैं कि बच्चे राजाएं अंत समय में इतने ऐशो आराम में चले गए, शराब कबाब व्यसनों के पीछे, वैश्याओं के पीछे, सारी जिंदगी उसके पीछे जब इतने अलमस्त हो गए, उनके मंत्रियों ने देखा है राजा तो मौज मस्ती में है, उसके ऊपर दुश्मनों को साथ दे करके आक्रमण करके उसकी राजाई खत्म करा दी, छीन लिया। वर्तमान समय अगर हम आत्माएं राजा हैं तो चेक करना चाहिए, इतने अलमस्त तो नहीं है जो ये कर्मचारी मेरे, मन बुद्धि संस्कार, मुख्यमंत्रियां हैं हमारे सब, और ये आंख नाक कान मुख हाथ, ये जो हमारे सहयोगी साथी हैं, कहीं ये राज्य तो नहीं कर रहे हैं, इसका राज्य तो नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य तो नहीं है, मैं आत्मा राजा हूं। अगर सचमुच आत्मा प्राप्ति संपन्न है, ज्ञान को यथार्थ समझा है, बाबा को यथार्थ पहचाना है, तो उस पहचान की निशानियां प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई देंगी, वो आत्मा कर्म इंद्रिय जीत बन जाएगी, उसके सबके साथ संबंध बड़े मधुर हो जाएंगे, मिलनसार हो जाएगा, अपने आप को हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेगा, प्राप्तियां हैं, भरपूरता है, संपन्नता है, हलचल नहीं है। इसलिए तपस्या भट्टी में आप सभी अपनी ऐसी भरपूर स्थिति बनाओ जो बाबा कहे ये मेरे बच्चे इतने भरपूर हैं, जो दूसरों को दे करके मास्टर दाता बन करके अपने समान बना रहे हैं। जो कुछ मिला है, जो कुछ बाबा से हमने पाया है, इतना हम भरपूर हों जो दूसरों के देने के बिना रह ही न सके। अब वो स्टेज चाहिए, चार पांच सम्मान याद रखना, संगम युग पर हम सभी वर्तमान समय ब्रह्मा बाबा के साथ, कपल देव है बाबा और हमारी माँ कामधेनु है, जगत अम्बा माँ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ और ब्रह्मा कपल मुनि, कपल है जोड़ा है, उसके हम सब बच्चे हैं, हमारी कोई कामना रह नहीं सकती, कोई हद की कामनाएं इंसान को परवश बनाती हैं, पराधीन बनाती हैं। अगर कामना नहीं है तो बाबा कई बार ये स्लोगन याद कराते हैं, जहां कामनाएं हैं वहां सामना नहीं किया जा सकता, और जब सब कामनाएं बाबा ने पूरी कर दी, मुझे कोई से कुछ नहीं चाहिए, ये मेरी क्या महिमा करेगा, क्या मुझे मान देगा, क्या शान देगा, क्या मुझे चाहिए। स्थूल सूक्ष्म सब प्राप्तियों से संपन्न संगम पर बाबा ने अपने एक एक बच्चे को बनाया है। पहले कहते थे अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, लेकिन अभी का स्लोगन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में। आज जितने हमारे बाबा के बच्चे हैं, सेवा केंद्र हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां तो साहूकारों की सेवा करती हैं, लेकिन 90% लोग बिल्कुल गरीब और गांव के हैं, लेकिन उनकी जीवन साहूकारों से भी अच्छी है। आप उनके जीवन को देखो, अगर उसी लौकिक जीवन में वो परिवार होता तो उसके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, लेकिन बाबा मिल गया, बाबा ने जीवन जीना सिखा दिया, एक एक पैसे की बचत करना सिखा दिया और वो गरीब ही साहूकार बन गया। तो साहूकारों की सेवा हम नहीं कर रहे, हम गरीबों को साहूकार बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उनको क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे चलना है, क्या रहना, कैसे रहना है। बाबा ने एक एक बच्चे को जीवन जीने की कला सिखाई है। बच्चे जितना है उतना कैसे संतुष्ट रहो, तो दूसरा समान ये स्मृति में रहना रखना कि हम सब संतुष्ट मणियां हैं। बाबा जितना आपने दिया है उतना इतना दिया है, मैं इसमें संपन्न हूं, भरपूर हूं, माला माल हूं। किसी की दूसरे की चीज पर आंख न जाए। कई बार अप्राप्ति की अनुभूति वहां होती है जहां हम दूसरों से भेंट करते हैं, इसके पास ऐसी गाड़ी है, इसके पास ऐसा सेंटर है, इसके पास ये साधन है, मुझे भी करना है, मुझे भी लेना है, मुझे भी बनाना है, और उसके पीछे फिर सारी जिंदगी लगा देते भेंट करके, उसको रेस करके। बाबा कहता है रेस तो करो पुरुषार्थ में, लेकिन रेस करते साधनों को इकट्ठा करने में, इच्छाएं बढ़ती जाती व्यक्ति की। और इच्छाओं के लिए बाबा क्या कहता है, जहां इच्छाएं हैं वो व्यक्ति को परेशान करेंगी, जहां इच्छाएं हैं वहां समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए संगम युग पर हम अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा ब्रेक दें, इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चाहिए चाहिए चाहिए, क्या चाहिए, दो दिन की जिंदगी है और सामान 100 साल का इकट्ठा है, क्या करोगे, किसके लिए, किसके लिए संग्रह कर रहे हैं, क्या पोते आएंगे, बाल बच्चे आएंगे, कौन आएगा। जब ये कलयुग की इंड आ गई है, कलयुग के अंत समय में हम पहुंचे हैं, तो ये कलयुग की चीजें इकट्ठी करके हम सत्ययुग में तो नहीं ले जा सकते, जाएंगी पुरानी दुनिया की कोई चीज, एक चीज भी वहां नहीं जाने वाली है, केवल जाएगा तो पुण्य की पूंजी जाएगी, श्रेष्ठ संस्कार जाएंगे। और इस समय हम सब पुण्य की पूंजी जमा कर रहे हैं। कल हमारे क्लास में हमारी भट्टी चल रही है नीचे, तो आशा बहन जी क्लास कराते कराते बोली, दान और पुण्य में क्या अंतर है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके कहा कि दान तो जो कुछ हमारे पास है वो हम सब दे रहे हैं, जो कुछ है दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, हम दाता बन गए, लेकिन उसमें पुण्य तब बनता है जब उसकी आवश्यकता प्रमाण हम दे रहे हैं। आवश्यकता है तब हम सहयोग दे रहे हैं, वो पुण्य बन जाता है। वैसे कहते हैं गुप्त दान महापुण्य, देने के बाद अगर कोई वर्णन कर देता है तो दान दान ही नहीं रहता, पुण्य कहां से बनेगा। आज ब्रह्मा बाबा ने जो नंबर 1 पद प्राप्त किया, कितनी मुरलियों में कहता मैं कुछ नहीं करता हूं, शिव बाबा करता है, शिव बाबा मुरली सुनाता है, ये सब उसके बच्चे हैं, इसको याद नहीं करना, इसका फोटो नहीं रखना। मैंने कहा जिसने कहा कुछ नहीं रखना, जिसने कहा मुझे याद नहीं करना, आज हर घर में हर ब्राह्मण के पास ब्रह्मा बाबा का फोटो है, हर एक के दिल में है। ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ गुप्त रीति से किया, वर्णन नहीं किया, लेकिन उसी गुप्त करने के अनुसार वो श्री नारायण पद प्राप्त कर लिया। नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, बिना करने के बन गए क्या? वो करनी इतनी गुप्त किया, वो पुण्यवंत आ गया, पुण्यवंत आ गया। जो कुछ बाबा के पास था एक धक से माताओं बहनों को समर्पित किया, सोचा नहीं कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, पता नहीं संस्था चलेगी या नहीं चलेगी, एक धक से ओम मंडली को रजिस्टर्ड कर दिया, दे दिया। उसके बाद एक बार भी पूछा नहीं, हिसाब नहीं लिया, तुमने कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ जा रहा है। 14 साल तक आराम से रहे, खाया पिया सब हुआ, परिवार पलता रहा 400 का। फिर देखा है तो बहुत ऐसे नहीं, इसी के पीछे आराम मिल रही है, रह रहे हैं, सेवाएं कैसे करेंगे, विश्व कल्याण कैसे होगा। पेपर ले लिया और पेपर ऐसा लिया, अगर आज वो पेपर ये हमारी टीचर के सामने आ जाए पता नहीं कितनी ठहरेंगी, बचेंगी या नहीं। उसमें भी बहुत हिले हैं, ऐसे नहीं हिले, बहुत पक्के जो थे, मरेंगे मिटेंगे, जो बाबा कहेगा वही करेंगे। आप बताओ अगर आपको सर्दी जुखाम बुखार हो और संदेशी के द्वारा एक डायरेक्शन आए इन सबको छाछ पिलाओ, आप क्या कहेंगे? बाबा कैसे कह सकता है ऐसे, मारेगा क्या मुझे, संशय पैदा हो जाएगा। आज हमारी परदादी, उसको दमा थी, संदेश आया, संदेशी गई, बाबा ने कहा ऐसे बाबा से पूछ के उसको क्या दवाई दें, तो संदेशी कहती है बाबा ने कहा इसको बर्फ के पानी से नहला दो। बाबा मुस्कराने लगा कि अब ये मरी की मरी। याद है दीदी, कमलेश दीदी ये कहानी सुनाती थी परदादी, जब बात आई कि बर्फ के पानी से नहला दो तो ब्रह्मा बाबा चुप और परदादी कहे हाँ भले नहलाओ, मरना तो ही, निश्चय कितना होगा आप सोच सकते हो। बाथरूम में गई है, बर्फ का पानी का बाल्टी, उसी संदेशी को कहा गया जो तुम संदेश लेके आए तुम ही नहला दो। अब वो जब बाल्टी उठाने लगी फिर ट्रांस में चली गई, फिर ट्रांस में बाबा ने बुला लिया और दादी को आयुष का वरदान मिल गया, उसकी आयु डबल हो गई। पानी डाला नहीं बर्फ का, लेकिन परीक्षा बहुत बड़ी लिया, कितना निश्चय है कि भगवान कह रहा है। खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, लोग समझ रहे हैं हम तो यंग हैं, हम तो कुछ कमा सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। अरे बाबा कह रहा है बच्चे बाहर जो माया है अजगर के रूप में मुंह खोल के कड़ी है, कहीं नहीं जाना तुम, बाबा अपने आप खिलाएगा, बाबा आपकी पालना करेगा, उसकी जवाबदारी है, तुमको संशय क्यों उत्पन्न हो रहा है। लेकिन थोड़ी बुद्धि जो चलाता है वो तो सोचता है ना, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कमा सकता हूँ, दोपहर के भोजन का प्रबंध नहीं है, कुछ तो करूं मैं, मेरा भी कुछ फर्ज है। और बाबा कहता है नहीं बच्चे, जो बाबा खिलाए जैसे खिलाए, तुम्हारे पास जो मैंने धन दिया है उस धन का सिर्फ दान करना सीखो, ज्ञान का धन, गुणों का धन, चरित्र का धन, जो बाबा ने एक एक बच्चे को 14 साल तक पक्का करा के दिया, सिर्फ वही पेपर लिया कि जाओ अभी इसका दान करो। और दान किया, बांटा, भरपूर थे, सब कुछ देने लगे, दृष्टि देते थे, सिर्फ एक बहन ओम का ध्वनि लगा दे अगर तो पूरी सभा ट्रांस में चली जाती थी, केवल बाबा की ध्वनि से नहीं। कोई भी निमित्त दादी, कोई भी बड़ी बहन क्लास कराते करते ओम ऐसे ध्वनि लगाई और पूरी सभा स्वर्ग में डांस करने लगे, कितनी योग पावर होगी, कितनी शक्ति होगी। स्थापना ऐसे थोड़ी हुई, फिर उसके बाद कितने विघ्न, एक के बाद एक, पवित्रता की बात जहां आई, खान पान की बात आई, नियमों की बात आई, वहां सब जगह झगड़े और उन झगड़ों के बीच में स्थापना। लेकिन बाबा कितना बेफिक्र होगा, बच्चे गाली देने वाले एक दिन गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे, ये सब निर्दोष हैं, कोई इनका दोष नहीं। कितनी बड़ी दिल होगी ब्रह्मा बाबा की, कितनी ऊंची स्थिति होगी, और वो स्थिति बनाई संपन्नता के आधार से, भरपूर थे, ज्ञान इतना पक्का था, भरपूर ज्ञान था, कि ये आत्माएं आज नहीं तो कल पहचानेंगी। ये कार्य भगवान का कार्य है, मेरा नहीं है, वो करा रहा है। इसी निश्चय के आधार से विजय प्राप्त कर ली। तो हम सभी थोड़ी सी बातें आती हैं, छोटा मोटा पेपर आता है, कितनी हलचल पैदा कर देते हैं। खुद भी हलचल में आते हैं, बड़ों को भी अंदर हलचल कर देते, हेडक्वार्टर में भी हलचल आ जाते। इसलिए अचल स्थिति तभी बनेगी जब भरपूर होंगे। और ऐसी स्थिति बनानी है जिसकी यादगार हमारा स्तंभ बना हुआ है, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, शांति का स्तंभ। स्तंभ माना पिल्लर, मजबूत, कोई हिला नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी स्थिति का स्तंभ बन करके दिखाया जो आज उनकी यादगार में शांति स्तंभ, लाइट हाउस की तरह खड़ा है। यही प्रेरणा दे रहा है, बच्चे अपनी स्थिति को स्तंभ बना दो, बस हलचल में नहीं आओ। उसके लिए आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत चाहिए। कोई इच्छा नहीं, कोई से कोई चीज नहीं चाहिए। कोई भी हद की कामनाएं इंसान को परेशान करती हैं। हद की कामनाएं नहीं रखो, मान मिले, शान मिले, वस्तु मिले, कोई चीज मिले, प्रभावित हो गए, ये बड़ा अच्छा है, बहुत सहयोगी है, बड़ा स्नेही है। और जहां आत्मा प्रभावित हो गई वहां उसका लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव सब कुछ शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या करना, केवल एक के ऊपर प्रभावित होना है। कोई कितना भी गुणवान हो, कितनी भी विशेषताएं किसी आत्मा के अंदर हो, कितना भी स्नेही और सहयोगी हो, बाबा कहता बच्चे ये प्रभु देन इसको मिली है, उस प्रभु देन को उस आत्मा की समझ करके आप उस पर प्रभावित हो रहे हैं। ये बहुत गलती, बड़ी गलती है। भगवान ने इसको दिया है, हम उसकी विशेषताओं को देख रहे हैं लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। जहां पर कोई आत्मा किसी व्यक्ति की तरफ झुक गई, वो फलाना भाई होता, फलानी बहन होती, बहुत मदद करती, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्नेही सहयोगी है, एक की तरफ झुकाव होना, एक को विशेष मानना और दूसरों से दूसरा किनारा करके रहना, यही बंधन है। और ज्ञानी तो आत्मा की निशानी है, कभी भी किसी के बंधन में नहीं बंध सकते। अगर बंधन बन रहा है तो समझो ज्ञान नहीं है। ज्ञानी आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने रहे हुए बंधनों को काट रही है, नया बंधन नहीं बना सकती। अगर बनता है तो देख लो कहां कहां बुद्धि भटकती है। योग में बैठते ही पता चलता है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, संसार में दो ही चीजें बाबा कहता, दोनों में कोई व्यक्ति किसी को खींच रहा है, कोई वस्तु खींच रही है, किसी का रूप, किसी का रुपया, देखना कहीं पर भी बुद्धि की आकर्षण न जाए। अगर बुद्धि खींच रही है माना उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, नया हिसाब किताब बन जाएगा। इसलिए किसी से भी वैर नहीं, नफरत नहीं, घृणा नहीं, सब अच्छे हैं। एक विशेष अच्छा है, वो विशेषता उस विशेष की अच्छाई अच्छा बनने नहीं देगी। इसलिए हमें कभी भी किसी देहधारी की तरफ किसी भी तरह से झुकना नहीं है, उसके प्रभाव में नहीं आना है। प्यार से पालना करो, सहयोगी बनाओ, स्नेह दो, बाबा की तरफ उसका झुकाव बढ़ाओ, लेकिन उस आत्मा की तरफ आपका झुकाव ना हो जाए। सब कुछ सफल कराओ उसका, उसको इतना स्नेही सहयोगी बना दो कि वो बाबा के बिना रह ही ना सके। इसलिए ध्यान देना, व्यक्तिगत कोई चीज अगर कोई व्यक्ति मुझे दे रहा है, माना वहां बंधन बन जाएगा। इसलिए अगर दे रहा है, ठीक है, दिया उसने, भावना है, आपने कोर्स कराया है, आपने उसको जीवन दी है, आपने उसको सही मार्ग दिखाया है, कुछ भी देता है सब बाबा के यज्ञ के लिए है। ये बड़ों से छिपा करके अपने पास नहीं रखना, छिपा के रखा तो वो भूत बन जाएगा, वही परेशान करेगा और वही अंत समय में याद आएगा। इसलिए कोई भी हद की प्राप्तियां अगर कहीं से हो रही हैं, तो उस हद की प्राप्तियों को स्वीकार करके, मान को भी स्वीकार कर लिया, सम्मान को भी स्वीकार कर लिया, कोई वस्तुओं को स्वीकार कर लिया, अपना समझ लिया और यूज कर लिया, तो बंधन बन जाएगा। ठीक है, महिमा अगर मेरी कोई कर रहा है, बाबा ने ऐसा बनाया है ना, याद बाबा की आना चाहिए, मेरे अंदर क्या कला थी, मैं कहां से सीख के आया, मैंने क्या किया। कोई महिमा करता है, ठीक है भाई, बनाने वाला बाबा है, उसने मुझे ऐसा बनाया है, आप भी ऐसे बन सकते हो। कभी भी अपनी महिमा स्वीकार करके अगर खुश हो गए, तो जरा भी कहीं ग्लानी हो जाएगी तो मूड खराब हो जाएगा। विशेष ध्यान देना, कभी भी मूडी नहीं बनना। कई बहुत मूडी होते, अभी अभी देखो तो एकदम नाच रहे हैं खुशी में, बहुत अच्छी स्थिति है, और अभी अभी देखो तो सोडा वाटर, कहां वो खुशी चली गई, कहां वो नशा चला गया। छोटी सी बात, दादी की बात याद रहती ना, गुलजार दादी की, इन बातों में बड़ा अकल है, आती हैं चली जाती हैं, और बाबा के बच्चे नॉलेजफुल समझदार उन बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, दो दिन चार दिन आठ दिन, उसने मेरे को ऐसे कहा था, मेरे साथ ऐसा उसने किया था, और उसके कारण रोज रोएंगे धोएंगे, मूड खराब करेंगे, इधर सुनाएंगे उधर सुनाएंगे, अपना समय और दूसरों का समय बर्बाद कर देते। ध्यान दो, बातें आती हैं, सबके सामने आती है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, चाहे कितना भी महारथी है, किसके आगे नहीं आती, हर एक के हिसाब किताब हैं, कहीं ना कहीं हैं, लेकिन कोई है जिस वजह से नथिंग न्यू, आई है चली जाए, स्थिति नहीं डगमग होती। बाबा ने हमें इतनी सुंदर ब्रेक दी है, नथिंग न्यू ड्रामा। अगर मैं श्रीमत की बाउंड्री के अंदर हूं, कोई कितना भी मेरा अपमान कर ले, कितनी भी मेरी ग्लानी कर ले, कितना भी मेरे पर कलंक लगा दे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैंने अगर कहीं मर्यादाओं में लूज हो गए, और ये मेरे को ऐसे क्यों कहते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, वैर हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है, दूरी बढ़ जाती है, खुशी गायब हो जाती है, मूड खराब हो जाता है। छोटी सी बात है, किसके सामने नहीं आई, सबके सामने आई, और विशेष जो यंग एज में है उनके ऊपर तो बहुत जल्दी कलंक लग जाते हैं, जरा भी कोई से बात कर लेंगे फट से उनका नाम रूप की बीमारी का, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसीलिए आए थे क्या। कोई भी बात है, परवाह नहीं करो, अपनी लकीर के अंदर रहो, मर्यादा की लकीर है हमारे साथ, बाबा ने हमें बाउंड्री खींच के दी है, कहीं भी लूज टॉक नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, हल्की बातें नहीं करनी, लौकिक बातें नहीं करनी, व्यक्त और व्यर्थ उन बातों में मुझे अपना समय नहीं देना है। जो व्यक्त और व्यर्थ से मुक्त रहता है वह अव्यक्त बन जाता है, वो अनुभव करता है सचमुच बाबा ने इतना दिया है, जो हर नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव बना सकते हैं, गलत को भी हम सही कर सकते हैं। और बाबा कहता है जो मेरे बच्चे निमित्त हैं, आज्ञाकारी हैं, उनके द्वारा अगर कोई गलती हो भी गई तो मैं सुधार दूंगा। कितनी बड़ी गारंटी है बाबा की। लेकिन बाबा के ऐसे सच्चे सपूत बच्चे हैं जो बाबा मेरी गारंटी ले ले। मुझे एक बार की बात याद है, शुरू शुरू की मैं यहां मधुबन में था, कोई ईर्ष्या तो होती है एक दूसरे की, कोई ने ऐसे बोल दिया, दादी तक वो बात गई, उसके लिए मेरे पास नहीं आना, मुझे पता उसका चार्ट क्या है, इतनी पावर से उसको बोल दिया कि उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं सुनाना, मैं जानती हूं उसको। इतना बड़ों का विश्वास होना चाहिए, इतना उनके प्रति हमारी सच्चाई होनी चाहिए जो वो हमारी गारंटी ले लें। कभी दूसरे को बोलने की हिम्मत न पड़े, लेकिन इतना संबंध अच्छा चाहिए, इतना समीप संबंध चाहिए। तो हम सब बाबा के बच्चे, जितना प्राप्ति हुई है, प्राप्ति संपन्न बन करके मास्टर दाता बन जाए, तो अपने आप को मास्टर कामधेनु, मास्टर संतुष्ट मणि, संतुष्टता की देवियां हैं, देवताएं हैं, मास्टर दाता हैं, और उदारता की ऐसी भावना है जो आज बाबा ने कहा फ्राक दिल, बड़ी दिल, और देखा है आप लोगों ने, अनुभव भी किया है, मैं भी अनुभव करता हूं, जिनकी दिल बड़ी है ना उनका भंडारा और भंडारी सब भरपूर रहती है, कभी खाली नहीं होती। देते हैं देते हैं देते हैं बस, और सब कुछ बाबा उनको देता है, भर देता है। इसलिए हम सबको बाबा ने बड़ा फ्राक दिल बनाया है, उदार दिल बनाया है, किसी की कमी कमजोरी संस्कार देख करके उनसे हम किनारा नहीं करते, बल्कि हम उनको साथ दे करके सहारा दे करके उनकी कमियों से उन्हें मुक्त करा दें। अगर हम संपन्न हैं, हम भरपूर हैं, हम गुणवान हैं, हम चरित्रवान हैं, तो कोई ऐसी कमजोर आत्मा आ जाए, क्या हम उसकी कमजोरियों का वर्णन करेंगे? हमारा फर्ज कहता है ऐसी शुभ भावनाएं रखो, ऐसा शुभ चिंतन करो। अगर आप वाणी से उसको मदद नहीं कर सकते हो, सहयोग नहीं दे सकते हो, तो शुभ भावना का सहयोग दो, इस आत्मा का कल्याण हो जाए, ये आगे बढ़े, इसको हिम्मत मिले, शक्ति मिले, बाबा इसको पार कर दे, पेपर आया इसके आगे। ऐसा दातापन का संस्कार, उदारता की भावना सबके प्रति, बेहद में, हद में नहीं। हमारी दादियों ने सब लक्षण अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण किए, कोई हद की कामना रखी ही नहीं कि बड़ा पैसे वाला है, पैसा देगा, ये मदद करेगा, ये सहयोग देगा, वो क्या देगा, देने वाला दाता बैठा है। किसी के आगे वो झुके नहीं, भले कैसा भी आए, सफल करे, भले सफल करने की प्रेरणाएं दी। दादी जानकी जी ने कितने लोगों का सफल कराया होगा, लेकिन कभी पर उनके अधीन नहीं हुई, ऐसे नहीं वो अपना चलाएगा, तो सफल करना तो कर ले, है दिया श्रीमत दी, लेकिन कभी भी ये कर रहा है तो यही बड़ा हो गया, नहीं, सब बाबा के बच्चे हैं। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, बाबा ही सुनाता है कई मुरलियों में कि बच्चे गरीब है, भावनाएं अच्छी हैं, 2 रुपया भी करता है, साहूकार 100 रुपया करता है, वो भी समान हो जाता है, उसकी भावनाएं हैं। तो बाबा ने जैसे सबके प्रति सम दृष्टि रखी, ऐसे हम सब की भी, हर आत्मा के प्रति सम दृष्टि हो, समान दृष्टि हो, वैसा ही हमारा व्यवहार हो, तब कहेंगे बाबा ने हमें भरपूर किया है, संपन्न किया है, न किसी से धन चाहिए न कोई साधन चाहिए, दाता दे रहा है अपने आप आ जाएगा। आवश्यकताएं ब्राह्मणों की पूरी न हो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इच्छाएं तो एक है, 2 मकड़ी की जाल की तरह फैल जाती है। इच्छाओं पर बहुत कंट्रोल चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बाबा कहते चाहिए चाहिए चुहरा बना देगी, इसलिए कभी भी कुछ नहीं चाहिए। बाबा आपने बहुत कुछ दिया है, आपने इतना संपन्न बनाया है जो हर चीज भरपूर है, और जितनी है उतनी बहुत है, ऐसे नहीं इसके पास इतनी है मेरे पास इतनी है, अगर ये महसूसता आई इसके पास ज्यादा है मेरे पास कम है तो खाली लगोगे, भरपूरता का अनुभव नहीं होगा। लेकिन मेरे को जितना दिया है, मेरे को जो गोल्डन चांस मिले हैं, मेरे जैसे चांस और कोई को नहीं मिले, कोई को तन सफल करने की सेवा मिली है, कोई को मन सफल करने की, कोई को धन सफल करने की, हर एक को भाग्य बनाने का चांस संगम पर मिला हुआ है, हर एक के हाथ में बाबा ने भाग्य बनाने की कलम दी है, कोई ऐसा नहीं कह सकता मेरे पास नहीं है, है कि नहीं है? भाइयों के पास है कलम, है नहीं? भाग्य बनाने की कलम है, बना रहे हो? कितने जन्मों की बना रहे हो? 84 जन्म की, और वो कलम श्रेष्ठ चिंतन, सकारात्मक चिंतन, उसके द्वारा श्रेष्ठ कर्म, जिसका चिंतन अच्छा है उसके बोल और कर्म अपने आप अच्छे हो जाएं। बाबा कई बार कहते हैं संकल्प बीज है, इसलिए कभी भी किसी के प्रति, न अपने प्रति, न परिवार के प्रति, न बड़ों के प्रति, न यज्ञ के प्रति, कभी भी कोई सुनाए कान बंद कर लो, मुझे व्यर्थ नहीं सुनना है, मुझे पर चिंतन नहीं करना है, बाबा बैठा है, बाबा यज्ञ रक्षक है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य है वो संपन्न होना ही है, कोई कितनी भी बातें करे, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी, मैं इसलिए नहीं आया हूं, मैं इसलिए बाबा का बच्चा नहीं बना हूं जो वो क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, होने दो जो हो रहा है, बाबा बैठा है, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने चिंतन को व्यर्थ और नेगेटिव न बनाऊं, वो है ज्ञानी तू आत्मा, वो समझदार, वो सर्वशक्तिमान है। अगर कोई व्यर्थ और नेगेटिव सुनाता है, उसको हम अच्छे में परिवर्तन करें, व्यर्थ को, नेगेटिव को सकारात्मक पॉजिटिव में चेंज कर दो, इसमें भी कुछ भला होगा, इसमें भी कुछ कल्याण है। मैं अपनी स्थिति और अपने संकल्प समय क्यों गवाऊं? समझदारी तो ये है। और जो संपन्न आत्माएं हैं ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, योग की शक्ति से, वो कभी भी कोई भी बातों में अपनी एनर्जी को व्यर्थ नहीं करती। हम सबको बाबा ने दो एनर्जी जमा करने के लिए श्रीमत दी है और सबके पास वो है, लेकिन व्यर्थ कितनी जा रही है, समर्थ कितनी हो रही है, वो नंबरवार है। एक संकल्प की बहुत बड़ी एनर्जी है, बाबा कहते संकल्प से सृष्टि रची जा सकती है। संकल्प अगर आपके श्रेष्ठ हैं, शुभ भावना संपन्न है, सीमित हैं, कंट्रोल वाले हैं, जो सोचोगे वही होने लगेगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। संकल्प उठा और कार्य हुआ। बाबा की मुरलियां चली हैं कि बच्चे एक दिन आएगा जो सारे यज्ञ की कारोबार सूक्ष्म संकल्पों के आधार से चलेगी, कोई इसको डायरेक्शन देने वाला नहीं रहेगा, और आज वही समय आ गया, आ गया, अब कोई कहने वाला नहीं है। सूक्ष्म संकल्प दादियों के, बड़ों के, बाबा के सूक्ष्म संकल्पों से सृष्टि, ब्राह्मणों की कितनी वृद्धि को प्राप्त हो रही, हमारे पास भी एनर्जी है, हम इसको सिर्फ इधर उधर की बातों में न गवाएं, उसको बचाओ, जितना संकल्प बचा सको बचा लो, बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्प से सृष्टि की रचना होती है, संकल्प से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और दूसरी शक्ति है बोल की शक्ति, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जितना जरूरी है उतना ही बोलो। ये बोल बहुत बड़ी एनर्जी है, और इसी एनर्जी के आधार से बाबा ने एक बार कहा था, कई बच्चों के प्रश्न उठते हैं, इतनी संदेशियों में से गुलजार दादी को बाबा ने क्यों यूज किया? आपको सबको शायद सुना हो कहानी, मालूम हो कि बाबा की सबसे फेवरेट संदेशी हमारी संतरी दादी थी, हमारी सील दादी थी, एक सेकेंड में बाबा का संदेश ले आती थी, जब जरूरत पड़ती थी बैठ। सील दादी तो इतनी अच्छी संदेशी, मैं आपको एक दिन की बात सुनाता हूं। सील दादी यहां भोग लगाने बैठी, छोटा हाल था, ये नहीं था उस समय, कोई का पैसा गुम हुआ था, उसको पता नहीं था, और ढूंढ रही थी बहन, तो ट्रांस में गई और संदेश लेकर के आती है, दादी को बोलती है एक जगह पर कोई ने पैसा छिपा के रखा है, बाबा ने दिखाया मुझे, कहती कहाँ रखा है, वो ले गई और दिखाया वहां पैसा रखा था, वही जो चोरी हुआ था। फिर दूसरा संदेश लाती है कि ये जो आप लोग डीजल या मिट्टी का तेल का स्टॉक रखते हो ना, उसके नीचे कोई छेद है, ऊपर से भरते जाते हो, नीचे नीचे निकल रहा है, बाबा ने मुझे दिखाया है। अब बताओ, भर रहे हैं हम, ऊपर से डालते जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं खर्च हो रहा है, इतनी गाड़ियां, इतना डीजल पेट्रोल जा रहा है, लेकिन बाबा ने कहा उसमें इतना नहीं जा रहा है, वो नीचे छेद है, एक चेक करो। अब अव्यक्त वतन में जाकर के वो संदेशी आकर के संदेश सुना रही है, उसी समय चेक किया, सचमुच में छेद था नीचे, कोई को पता नहीं था। ऐसे ऐसे संदेशी थी बाबा की फेवरेट, जो हर बात में बाबा को भी डायरेक्शन दे देती थी, बताती थी आकर के। लेकिन लास्ट में जब बाबा अव्यक्त हुए हैं और गुलजार दादी भोग में बैठी और बाबा आए हैं, बाबा ने फिर भी कहा है गुलजार दादी के लिए, दादी दीदी को, आप जिसमें कहोगे उसमें बाबा आएगा। लेकिन बाबा को तो वही पसंद थी, और उसका मूल कारण था, बाबा ने एक बार कहा है, इस बच्ची ने कभी भी व्यर्थ न बोला है न बैठकर सोचा है। इसके पास इतनी संकल्प शक्ति जमा है जो भगवान इसकी संकल्प शक्ति को यूज करता है। इसके पास बोल की इतनी शक्ति जमा है जो 14-14 घंटा भगवान को बोल करके इतने बच्चों की पालना किया है। यूज कर लिया भगवान ने उनकी शक्तियों को। हम सबके पास भी है। क्या बाबा हमारी शक्तियों को यूज नहीं करेगा? इस समय तो सबकी शक्तियों को यूज कर सकता है। इसलिए सब ध्यान देना, अभी समय अनुसार बाबा ने इतना सब कुछ दिया है, ज्ञानी तू आत्मा बन करके, ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बन करके, भरपूर हो करके, सर्वशक्तिमान का साथ लेकर के अपनी एनर्जी को बचा लो, अंत समय में बहुत काम आएगी। कई आत्माएं जो दुखी अशांत कोने में बैठी हुई पुकार रही हैं, संकल्प शक्ति से मनसा सेवा करो, पहुंच जाओ वहां, मदद कर दो उनको। और बोल की एनर्जी, दो शब्द बोलो कहें तो हमारे लिए सत्य वचन है, ये हमारे लिए महावाक्य हो गए, मेरा जीवन बदल दिया ऐसे बोल बोल दिया आपने। तो इस एनर्जी को जमा करेंगे तो बाबा बहुत खुश हो जाएगा, वाह मेरे बच्चे वाह, तुमने मुझे साथी बनाया है। तो सर्वशक्तिमान को साथी बना के, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन करके खूब सेवा करो, महादानी बन करके रहो, उदार दिल बन करके रहो, सबको देते चलो, आप भरपूर रहेंगे, कभी कम नहीं आएगा। और ऐसी भरपूरता होगी जो लगेगा हमने तो पाया है, कोई के पास नहीं है, हमें तो नशा रहता है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, मैं जाता हूं सचमुच बाबा इतना देता है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। सोचते हैं लोग यहां आया है इतने दिन के बाद, इसको ये दिखाऊं, इसको यहां ले जाऊं, इसको ये सौगात दिला, कुछ नहीं चाहिए, तुमको जो चाहिए यज्ञ को दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज देखने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं तो बाबा के बच्चों से मिलने आया हूं, वो याद करते हैं, उनसे मिलना है मुझे, जहां भी है हम चलेंगे साथ। संपन्नता भरपूरता है, कहां जा सकती है, कितनी भी अच्छी चीज हो मुझे नहीं चाहिए, दो रोटी बाबा खिला रहा है, प्यार से रख रहा है, दो कपड़े पहना रहा है, और क्या चाहिए मुझे। ऐसी अंदर की तृप्त आत्मा प्राप्ति संपन्न है, और ऐसा हम सबको बनना है। हद की कामनाएं क्या है, मृग तृष्णा है ना, भाग रहा है मृग के पीछे, मृग भाग रहा है पानी के पीछे, इच्छाओं के पीछे हमें भागना नहीं है, आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाए। वैसे भी कहते हैं तुम ज्ञान सूर्य के सामने रहो तो परछाई पीछे पीछे आती है, सूर्य के सामने हम हैं परछाई पीछे आएगी, ये जितनी सब प्राप्तियां हैं अपने आप पीछे पीछे आती हैं, उनके पीछे भागोगे तो आगे बढ़ जाएंगी, हमको नहीं मिलेंगी। बाबा के सामने रहो, सर्वशक्तिमान साथ है, सर्वशक्तियां साथ हैं, वो परछाई की तरह जितनी शक्तियां हैं सब पीछे पीछे आ जाएंगी, सब प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। अभी हम सब योग करेंगे आधा घंटे के लिए, सब बैठ जाओ तपस्वी मूरत बन करके, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा। सबको अकाल तख्त मिला हुआ है, ब्रकुटी की गुफा है, अकाल तख्त है, और इसमें मैं तपस्वी आत्मा एक चैतन्य ज्योति बिंदु चैतन्य स्वरूप में स्थित लाइट माइट का पुंज, एक बहुत सूक्ष्म सितारा, अपने स्वस्वरूप को देखो, अपने दिव्य नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं सर्व शक्तियों का पुंज, प्रकाश स्वरूप। चमकता हुआ सितारा, अपने शांत स्वधर्म में स्थित, अपने स्वरूप पर संकल्पों को भी एकाग्र कर लो। सर्वशक्तिमान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप अपने प्यारे पिता को अपने समीप अनुभव करो। जैसे मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूं, अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूं, ऐसे ही मेरे प्यारे पिता परम पवित्र सर्व गुणों के सिंधु मेरे साथ कंबाइंड है। मैं उनके सानिध्य में, उनके समान स्वरूप में स्थित उनके संग में रंगी हुई शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा, बाबा के मिलन का सुख, उस आनंद की शक्ति का अनुभव करो, समा जाओ। मैं आत्मा एक बहुत शुद्ध पवित्र लाइट के आभा मंडल में हूं। इस शरीर के चारों ओर एक सूक्ष्म आकारी शरीर इमर्ज करो। मेरे पवित्र संकल्पों से उस फरिश्ते स्वरूप में चमकते हुए शरीर में मैं आत्मा प्रवेश कर इस साकार वतन से भी दूर अपने उस लाइट के वतन में अव्यक्त वतन में बाप दादा के बिल्कुल समीप उनका वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। उनके मस्तक से निकलती हुई पवित्र किरणें मुझे संपूर्ण पावन बना रही है। मैं संपन्न और संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता हूं। अपने संपूर्ण स्वरूप द्वारा उस फरिश्ते रूप से इस ग्लोब को सर्च लाइट दो। कितनी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं, सबको सहयोग का शक्ति का अनुभव कराओ। प्रकृति के पांचों तत्वों को अपने सामने इमर्ज कर उन्हें भी शक्ति दो। परिवर्तन करने की शक्ति से संपन्न प्रकृति के सभी तत्व परमात्म कार्य में सहयोगी हैं। सबको सकार सतयुग की रचना में इन पांचों तत्वों का संपूर्ण सहयोग है। ये भगवान की साथी है। उनका भी थैंक्स करो। अव्यक्त वतन से और ऊपर जाओ, उस सुनहरे लाल प्रकाश के बीच जो हम सब आत्माओं का अपना निजी घर है, मूल वतन। जहाँ सदा शिव बाबा निवास करते हैं, असीम शांति है। उस घर में संकल्पों की भी हलचल नहीं है, हर आत्मा निराधार है, अपने निज स्वरूप में स्थित, परम पवित्र है। उस घर का अनुभव करो। ज्ञान सूर्य की किरणें लो, निराकारी स्वरूप में स्थित होकर प्रभु मिलन का आनंद लो। सर्वशक्तियों से संपन्न बन इस कर्म क्षेत्र पर इस शरीर का आधार लेकर मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म के लिए अवतरित हुई हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मन बुद्धि पर मुझ आत्मा का शासन है। सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियों से मैं संपन्न आत्मा हूं।
सबकी अनुभूति अच्छी रही, योग की क्लास भी बहुत अच्छा रहा। तो खास अपनी भट्टी छोड़कर आप लोगों के लिए अमूल्य समय निकाल कर आए हैं। एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।